ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीर्ये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदिगौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन में प्रातःकाल के श्रीमद् भागवत के सत्संग में। श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंध के तीसवें अध्याय के ऊपर चर्चा चल रही है। भगवद गीता श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंध में दो भगवान के अवतारों का वर्णन है। पहले भाग में भगवान वाराहदेव पृथ्वी को गर्भसागर से निकाल कर लाए और स्थापित किया ताकि ब्रह्मा उसके ऊपर सृष्टि करे। तो पहला भगवान का अवतार हम सबको जीवन देने के लिए, ये पृथ्वी होगी तब सृष्टि होगी तब हमारा जन्म होगा और तब हम कुछ भक्ति करेंगे कर्म करेंगे और भगवान को प्राप्त करेंगे। तो भगवान ने पहला अवतार लेकर वाराहदेव का पृथ्वी को स्थापित किया और हिरण्यकश्यप का वध किया, उसका उद्धार किया। दूसरा भगवान का अवतार जिसकी चर्चा अब चल रही है सत्संग में, वो भगवान कपिल देव देवहूति पुत्र करदम के सुत कपिल देव का अब वर्णन चल रहा है। जब सृष्टि हो जाए तो उसको चलाना कैसे चाहिए, उसके नेम क्या है, वो भी शिक्षा भगवान को देनी पड़ेगी। तो भगवान कपिल देव मानव को इस संसार में कैसे रहना चाहिए, और कैसे इस संसार में रहते हुए भगवान को प्राप्त करने का साधन करना चाहिए, ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। सुन कौन रहा है? कर्दम मुनि सिद्धानाम कपिलो अस्मि। कपिल, भगवान कपिल देव सिद्ध है। सिद्ध का मतलब जो संसार के बंधन से मुक्त है। और वो शिक्षा किसको दे रहा है? मां देवहूति को। तो देवहूति माता को शिक्षा दे रहा है। सुन कौन रही है? एक महान नारी, भागवत नारी, मनु पुत्री, स्वयंभू मनु की बेटी, ब्रह्मा जी की निवासी। तो इतनी महान नारी सुन रही है, लेकिन भगवान कपिल देव ने अपने आप नहीं सुनाया, मां देवहूति ने प्रश्न पूछे हैं। मां देवहूति ने पहला प्रश्न पूछा है, जो ये प्रसंग चल रहा है, कि आपने विश्लेषण करके इस भौतिक जगत का तो वर्णन किया, लेकिन आप सर्व उत्तम भक्ति का अब व्याख्या कीजिए, जिससे भगवान की प्रेम मई सेवा प्राप्त हो सके। पहला प्रश्न देवहूति माता जी का है कि ज्ञान का तो आप बहुत बड़ा विस्तार से प्रचार किया, हमको समझाया कि संसार कैसा है, कैसे बना है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, ये सब समझाया, लेकिन अब हमें शुद्ध भक्ति की शिक्षा दीजिए, जिससे भगवान की प्राप्ति हो, जिससे भगवान से संबंध स्थापित हो, जिससे भगवान की सेवा मिले। तो भगवान कपिल देव ने एक ये प्रश्न सुना और फिर मां देवहूति ने कहा, आप कृपा करके संसारी मेरे लिए भी, अपने लिए बात किया पहले, बोला मेरे लिए भी और संसार के जीवों के लिए आप ये वर्णन कीजिए कि संसार में जीव बंधे हुए क्यों पड़े हैं, उनको छूटने के लिए सहारा भी मिलता है तो अपने आप को बंधन में क्यों डालते हैं? संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में लोग क्यों आ रहे हैं? आखिर इसमें इतना कष्ट है फिर भी आ रहे हैं, इसका आप जरा विस्तार से वर्णन कीजिए ताकि लोग सावधान हो जाएंगे और आपकी शिक्षाओं के अनुसार भगवान की भक्ति करके अपने जन्म को सफल करेंगे। और फिर मां देवहूति ने कहा, आपके काल का जो स्वरूप है उसका भी वर्णन कीजिए कि आप काल के रूप में, समय के रूप में, मृत्यु के रूप में सारे संसार के लोगों के सारे काम कैसे चौपट कर देते हैं, सबको मालूम हो जाए तो ये लोग फिर आपकी भक्ति करेंगे। तो मां देवहूति का जो एक भाव कपिल देव ने देखा कि ये दूसरों का भला चाहती है, ये दूसरे लोगों का उद्धार चाहती है, तो बड़े प्रसन्न हुए और उदारता से एक पूरे अध्याय में भक्ति का वर्णन किया। और उस भक्ति में भी भक्तों का संग बड़ा अति आवश्यक है। और फिर काल का वर्णन करते हुए, अभी काल का ही वर्णन चल रहा है और काल के वर्णन के अंतर्गत जीवन में बंधन का कारण क्या है, जीव कैसे मां के गर्भ में आता है, ये गर्भ गीता इस अध्याय में है असल में, कि जीव कैसे गर्भ में आता है, फिर जन्म लेते ही कैसे बंधन में पड़ जाता है, ये हमारे जीवन की कथा बताइए, हम सबके जीवन की कथा है। अब इस कथा को आप अगर अपने लिए समझेंगे तो जाग जाग जाएंगे। अब समझेंगे कर्दम जी ने कथा की, मां देवहूति ने सुनी, चलो चलो प्रसाद खाएं, तो कुछ होने वाला नहीं। ये अपने लिए कथा समझेंगे तब हम जागेंगे। हम समझते हैं कथा दूसरों के लिए होती है, प्रसाद हमारे लिए होता है। तो ये श्लोक कर्दम मुनि बोल रहे हैं और मां देवहूति सुन रही है, और इसमें वर्णन स्त्री पुरुष दोनों का है। इसलिए आप अपने लिए ये नहीं समझना, आप ये समझना कि संसार में बंधन, आप सब भागवत पुरुष हैं, आप वृंदावन में आए हैं, आप भागवत सुन रहे हैं, आप हरे कृष्णा जप रहे हैं, इसलिए ये श्लोक आपके लिए नहीं है। जैसे देवहूति माता के लिए ये श्लोक नहीं था, लेकिन सामान्य लोगों को जगाने के लिए था। तो इस श्लोक को आपको ऐसे समझना है कि संसार में प्रचार करने के समय ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्योंकि भगवान के भक्त हो तो इस श्लोक को समझ के दूसरों को समझा सकते हो। तो आइए इस श्लोक का आवृत्ति करेंगे। कपिल देव बोल रहे हैं, माँ देवहूति सामने बैठी है और संसार के बंधन का कारण बता रहे हैं और आगे चल के बच्चे के जन्म से लेकर और 5 महीने में कैसे वो बड़ा कष्ट में दुखी होता है, फिर कैसे जन्म होता है, वो सारा वर्णन इस अध्याय में आएगा। अध्याय का नाम है भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन। विपरीत कर्मों का मतलब जो नहीं करने चाहिए वो कर्म। विपरीत एक कर्म होते हैं जो भगवान की तरफ ले जाते हैं, एक दूसरे तरफ ले जाते हैं। तो दूसरा तरफ क्या है? एक भगवान, एक दो ही रास्ता है, या भगवान है या माया है। वैसे भगवान भी सीधे नहीं है, बीच में यहां माया है और यहां भगवान है। माया क्या है? माया भगवान की बाहर अंग शक्ति है। तो ये भौतिक जगत की अधिष्ठात्री देवी माया है, 3 गुणों से इस जगत को बांध के रखा है। हम जीव हैं भगवान की शक्ति, लेकिन हम भगवान की शक्ति जीव माया से भिन्न हैं। और हमको कहा जाता है तटस्थ शक्ति, हम बीच में खड़े हैं। हमको स्वतंत्रता है कि हम माया के गोद में गिरे और विपरीत रास्ता ले ले, अथवा भगवान की अंतरंग शक्ति दूसरे तरफ है। भगवान तो आनंद से बांसुरी बजा रहे हैं गोलोक में, उनको कोई चिंता नहीं है किसी की भी, लेकिन उन्होंने अपनी अंतरंग शक्ति जिसका स्वरूप अहलादिनी शक्ति राधिका है, वो एक तरफ है और एक तरफ मां माया दुर्गा देवी है। आप बीच में खड़े हैं, आपकी इच्छा है कि आप किस तरफ झुकना चाहते हैं, इसमें आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अब आप कहां जाएं? एक तरफ मां है, एक तरफ मौसी है। मौसी समझ लीजिए, एक तरफ मां है, एक तरफ मौसी है। अब आपको कहां जाना है? मौसी के पास जाओगा तो फांसी है और मां के पास जाओगा तो अमृत है। अब आपकी इच्छा है, आप कहां जाना चाहते हो, स्वतंत्रता आपकी है। मौसी के पास जो भी चीजें हैं वो सब नकली हैं। जैसे नकली आभूषण होते हैं ना, चमकते ज्यादा हैं लेकिन चलते नहीं, और मां के पास असली माल है। जो असली भगवत धाम है उसका प्रतिबिंब माया का संसार है। जैसे नदी के किनारे पे कोई पेड़ खड़ा हो और पेड़ में आम लगे हो और नदी में खड़ा हुआ आदमी कहे कि ए देखो ये सामने आम मेरे दिख रहा है, परछाई पड़ती है ना नदी में, तो परछाई में आम नदी में दिख रहा है, उसको ऐसे पकड़ेगा तो आम मिलेगा। तो ये संसार में भव आध्यात्मिक जगत की परछाई है, उसमें जो कुछ दिख रहा है इसका असली रूप तो उधर है। जैसे कभी किसी किसी के घर में फल बना के सजा के रखते हैं लेकिन सब मिट्टी के बने होते हैं, दिखने में तो केला अनार लगता है लेकिन खाने में मिट्टी होता है। तो ये सब माल नकली है माया का। हाँ, ये दुकान नकली माल का है, लेकिन ग्राहक आप बताइए नकली के ज्यादा हैं कि असली के ज्यादा हैं? नकली के ग्राहक ज्यादा हैं। बस ये स्थिति हमारी ये है, असली के ग्राहक बहुत कम हैं, नकली के बहुत ज्यादा हैं। और हमने अपनी तरफ से चुना है, माया ने हमको नहीं पकड़ा है। वो दुकान खोल के बैठा है, वो अपना दुकान खोल के बैठी है, जो जाए वो जाए, ग्राहक जाएगा वो पकड़ा जाएगा। ये किसी का जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं है, माया किसी को नहीं पकड़ती है। जो भगवान को भूलता है वो अपने आप माया की गोद में गिर जाता है। तो अब विपरीत कर्मों में एक कर्म बहुत अच्छा लगता है संसार को, लेकिन यहां विपरीत कर्मों की लिस्ट में लिखा है। क्यों लिखा है ये तो भागवतकार व्यासदेव से पूछना, हमसे मत पूछना, बस सुन लीजिए। आइए पढ़ते हैं इसको। कपिल देव कह रहे हैं, भगवान आक्षिप्त
आशितात्मेन्द्रियः स्त्रीणाम् असतीनाम् च मायया रहो चरितया लापैः शिशूनाम् कलभाषिणाम् आक्षिप्तात्मेन्द्रियः स्त्रीणाम् असतीनाम् च मायया रहो चरितयलापैः शिशूनाम् कलभाषिणा आक्षिप्तात्मेन्द्रियः स्त्रीणाम् असतीनाम् च मायया रहो रचितया लापहि शिशूनाम् कलभाषिणा
अक्षिप्त का अर्थ है मोहित। कैसे होगा संस्कृत में? हमारी संस्कृति टेढ़ी है। आक्षेप का मतलब किसी को आंख मारना, ऐसे ये हमारा इसका अर्थ है। क्यों आगे ऐसे ही लगेगा है? देख लेना आप, आक्षेप का मतलब किसी को आंख मारना, ठीक है। मोहित शब्द मोहित है। अब दूसरा शब्द है आत्मा। यहां आत्मा का अर्थ है हृदय। वैसे आत्मा का अर्थ शरीर है, आत्मा है, मन है, और मन और हृदय में अंतर कम होता है तो ये हृदय। तो आत्मा का क्या अर्थ हो गया? इंद्रियः, इंद्रियां, स्त्रीणाम् स्त्रियों का, असतीनाम् असति वो सती नहीं, असत। जैसे जैसे वेदों का मंत्र है असतो मा सत गमय, असत का मतलब झूठ और सत का मतलब सत्य, तो असती का मतलब झूठी। असती नाम झूठी, च तथा मायया माया के द्वारा, रह एकांत स्थान में, रचितया प्रदर्शित, प्रदर्शित रचितया रचना करके प्रदर्शन करना, ओके। आलापही बातचीत से, शिशूनाम बच्चों के, कलभाषिणाम मीठे मीठे शब्दों से। तो एक शब्द को पहले आप पकड़ लीजिए, माया के द्वारा, ये दिमाग में पहले बिठा दीजिए। दोष न स्त्री का है, न पुरुष का है, न बच्चों का है, दोष किसका है? माया के द्वारा। लेकिन माया की गोद में गिरने का फैसला किसने किया? हमने। तो माया के द्वारा को पहले दिमाग में रखना, और फिर अब शिला प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य को, तात्पर्य से पहले अनुवाद को सुनिए। क्योंकि यहां लिखा है वह, वह का मतलब है, वह का मतलब है जो पहले हुआ वो। तो पहले कल के श्लोक का एक बार अनुवाद सुन लीजिए। यद्यपि वो चिंता से सदैव जलता रहता है, वो मतलब वो इंसान जो संसार में माया के गोद में गिर पड़ा है, वो यद्यपि चिंता से सदैव जलता रहता है। चिंता से जलता रहता क्यों लिखा? चिंता और चिता दोनों जलाती है। चिता एक बार जलाती है और चिंता बार बार जलाती है। बस के बिंदु का अंतर है चिंता और चिता में। इसलिए चिंता जलाती है। यद्यपि वो चिंता से सदैव जलता रहता है आदमी, तो भी ऐसे मूर्ख कभी न पूरी होने वाली आशाओं के लिए सभी प्रकार के अनिष्ट कृत्य करता है। चिंता भी है फिर भी मूर्ख है, जो कभी नहीं पूरे होने वाली आशा है उनको पूरे करने के पीछे लगा रहता है, उसके लिए उल्टा सीधा कुछ भी कर लेता है। जिससे क्यों करता है उल्टा सीधा, जिससे वो अपने तथाकथित परिवार तथा समाज का भरण पोषण कर सके। एक शब्द है कुटुंब, कुटुंब शब्द है ना, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कूट कार्य करके, कूट का मतलब चोरी बेईमानी धोखाधड़ी सब करके कुटुंब भरण पोषण करे। जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, पालन पोषण के लिए कुछ भी काला धंधा हो, पीला धंधा हो, लाल धंधा हो, सभी कर ले। और ये शब्द भीष्म पितामह ने कृष्ण भगवान को कहा है, आपने अर्जुन के रथ को कुटुंब मान लिया और उसकी रक्षा के लिए कभी घोड़ों को नीचे गिरा दिया और कभी अर्जुन को उत्साह के आपने उसकी रक्षा के लिए ऐसे काम किया जैसे गृहस्थी अपने घर के भरण पोषण के लिए करता है। वहां शब्द अर्जुन के रथ को कुटुंब भीष्म पिता मैंने कहा है। तो कुटुंब का अर्थ है कूटनीति से इधर उधर से कुछ भी करके लेकिन घर का भरण पोषण करना है। क्यों करे ऐसा? क्योंकि वो उस स्त्री को अपना हृदय तथा इंद्रिय दे बैठता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो स्त्री को अपना हृदय दे बैठता है, हृदय तथा इंद्रियां दे बैठता है। जो झूठ ही से माया से मोह लेती है वो उसके साथ एकांत में आलिंगन तथा संभाषण करता है और अपने छोटे छोटे बच्चों के मीठे मीठे बोलों से मुग्ध होता रहता है। तो क्या करना चाहिए? बच्चों को गुरुकुल में छोड़ के आना चाहिए। फिर एक बार पढ़ता हूं। देखो ये गृहस्थी के लिए नहीं है, ये गृह मेधी के लिए है। ग्रह मेधी, मेधी का मतलब जिसकी बुद्धि केवल घर में ही लगी हुई है, उससे ज्यादा जिसकी बुद्धि कहीं जाती नहीं है। और गृहस्थ जो गृहस्थ आश्रम में गृह को भगवान का समझ के उसका पालन पोषण करता है, उसका मालिक भगवान को मानता है और जीवन के लक्ष्य को नहीं भूलता है, घर तक सीमित नहीं रहता है। वैसे ग्रह मेधी के ऊपर सारे गृह लगे हुए हैं। गृह का मतलब, वैसे ग्रह का शब्द ही है नौ ग्रह जिसके ऊपर लगे हुए हैं वो ग्रह, चाहे गृहस्थ है या ग्रह मेधी है, ग्रह उसको लगे ही हुए हैं, ग्रह से छूटना बहुत मुश्किल है। तो ये ग्रह मेधी के लिए श्लोक है। आप ग्रस्त हैं तो दुखी मत हुई है, सुनिए। वो उस स्त्री को अपना हृदय तथा इंद्रियां दे बैठता है। अब जिसका अपना हृदय ही नहीं है तो वो करेगा क्या बेचारा? वो तो अपना हृदय और इंद्रियां दे बैठता है। भाई बगैर दिल के आप क्या करोगे? कहां हृदय देना चाहिए जरा ये बताओ। एक कहानी प्रभुपाद सुनाते थे, आपने सुनी है। एक बंदर था, बड़े सुंदर फल वन में खाता था और किनारे समुद्र के किनारे वो पेड़ के ऊपर रहता था और समुद्र में मगरमच्छ रहता था, बड़ा मगर भारी, और दोनों की बड़ी अच्छी मित्रता थी। बैठा बैठा रोज फल ऊपर से बंदर फेंकता था, मगर फल खाता था। मगर एक दिन अपनी पत्नी को कहा कि मेरा मित्र बहुत सुंदर फल खिलाता है, एक मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, खाओ। पत्नी ने फल खाया, बोला इतने फल खाता है तो उसका दिल तो बड़ा रसमय होगा, उसको लेके आओ, उसका दिल ही हम निकाल के जूस बना लेंगे। अब ये बेचारा मगरमच्छ, मगरमच्छ के जूठे आंसू तो सबको पता है, मगर के आंसू, वो तो बेचारा अपना दिल अपनी पत्नी को दे चुका था, अपनी स्त्री को दिल इंद्रियां दे चुका था। वो बंदर को बोलता है, भैया तुम बहुत मुझे फल खिलाते हो, आज मेरी पत्नी ने तुम्हारे लिए बहुत स्वादिष्ट प्रसाद बनाया है, भोजन हमारे घर चल के करो। बंदर भी ने कहा, भाई मित्र है, कहता है तो चलना चाहिए। कूद के बंदर आया, मगर की पीठ के ऊपर बैठ गया। आधे में गया तो मगर से बंदर ने पूछा, क्या बनाया है? बोला, बनाया बनाया कुछ नहीं है, मेरी स्त्री कहती है तुम फल खाते हो, तेरा दिल बड़ा रसीला होगा, तो उसको निकाल के जूस पीना चाहती है। बंदर ने कहा, मित्र ये बात तुमको पहले कहनी थी, दिल तो मैं पेड़ के ऊपर छोड़ के आया, चलो चलो तेरी स्त्री की दिल दुखानी नहीं है, मैं पेड़ से दिल ले आता हूं, फिर चलते हैं। और जैसे ही किनारे पे आया, बंदर पेड़ पे कूद गया, बोला दिल लेके आओ, बोला अब चलो, इतना मूर्ख मैं नहीं हूं। और प्रभुपाद जी इसको कहते हैं, भक्तों को अपना दिल राधा श्याम सुंदर के चरणों में दे देना चाहिए। बाहर बहुत मगर घूम रहे हैं, आपको बोलेंगे कि आइए आइए आइए, आपका स्वागत है, लेकिन वो आपके दिल का जूस बनाना चाहते हैं। आप बुद्धिमानी से कहना, हमारा दिल वृंदावन में राधा श्याम सुंदर के वहां है, मैं जाता हूं, आप रुकिए, जहां आओगे तो भक्त आपको छोड़ेंगे नहीं। तो भक्तों का संग और भगवान को दिल देना चाहिए, किसी को दिल देना नहीं चाहिए। किसी को दिल दोगे तो फिर ये गाना गाना पड़ेगा, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। इसलिए दिल भगवान को दे दो, जहां सुरक्षित पड़ा रहे, नहीं तो दूसरे बिगाड़ देंगे। किसी और को दिल मत देना। दिल देने का कैसा स्वरूप क्या है? दिल देने का, जिसमें दिल को बिठाओगे उसी को दिल दिया जाता है, और उसका चिन्ह सब स्त्रियों को बड़ा अभ्यास है। एक जैसे दिल का लॉकेट बनाती हैं, उसके अंदर किसी का फोटो लगाती हैं, इसका मतलब हमने इसको दिल दिया। इसलिए आप लॉकेट बनाओ, उसमें राधा श्याम सुंदर का फोटो लगा दो और बोलो हमने दिल इसको दे दिया। कम से कम बाहर से तो दिखाओ कि हमने दिल भगवान को दिया, इधर तो रोज बदलते रहता है, कभी किसका है कभी किसका फोटो है, कभी बच्चे का है तो कभी पत्नी का है तो कभी पति का है, रोज बदलता है इसमें। इसलिए दिल का लॉकेट बनाओ, उसमें भगवान राधा श्याम सुंदर को बिठा दो, कृष्ण बलराम को बिठा दो। तो दिल देने का मतलब किसी को दिल में बिठाना। तो दिल में किसको बिठाना चाहिए? भगवान को। और किसी को बोले तो बाहर बैठो प्रसाद खाओ जाओ, दिल में जगह नहीं है, एक ही आदमी बैठ सकता है उसमें, और वो भगवान के लिए है। वैसे भी भगवान तो सीना कूट कूट के कह रहे, सर्वस्चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में बैठा हूं, इसका मतलब दूसरे को हृदय में डालने का मतलब भगवान को निकालना चाहते हो, तो ये तो गलत हो गया ना। जो पहले से बैठा है, यहां तो कोई कमरे में किराए पे रहता है वो भी नहीं खाली करता है, और ये भगवान अपने कमरे में बैठा है, उसको आप निकाल के दूसरे को क्यों गुजारे हो? ये तो गलत काम है ना। क्यों भाई, आपको विचार ये ठीक लग रहा है कि नहीं? भगवान कहता है मैं हृदय में बैठा हूं, तो उसी को रहने देना चाहिए, दूसरे किसी को घुसाना जरूरी है क्या? दूसरे को कहां रखना चाहिए? आइए बैठिए, प्रसाद खाइए, भोजन खाइए, जलपान कीजिए, आप चलिए, आपका टाइम पूरा होगा, मेरे को जप करना है, गप मत करो, ठीक है। तो हृदय किसको देना चाहिए, सोच लो बोलो, हृदय किसको देना चाहिए, क्योंकि पहले से उसमें बैठे हैं, आपने उसको जाना नहीं, पहचाना नहीं, इसलिए दूसरे को दे रहे हो। ये तो ऐसे काम है जैसे वृंदावन के अंदर एक मकान 10 आदमी को बेचते हैं। कहीं भी जमीन ले लो, आपसे पहले दूसरे को बिकी हुई होगी, आप जाओगे तब वो खड़ा हो जाएगा। ये आप जिसका है उसकी दिल दूसरे को बेच के क्यों दे रहे हो, ये तो बहुत परेशानी का काम कर रहे हो ना, ये मत करो, ठीक है। वो उस स्त्री को अपना हृदय तथा इंद्रियां दे बैठता है। इंद्रियों में सबसे मुख्य इंद्री कौन सी है, मन, मनशिष्टानी इंद्रियाणी, सारे इंद्रियों का जो अधिपति है वो मन है, और वो मन अगर दे दिया किसी को तो फिर किसको देना चाहिए मन, भगवत गीता में सारी भगवत गीता का सार एक लाइन में है, भगवान कहते हैं मैं अर्पित मनो बुद्धिर, तेरा मन मुझे दे दो, भगवान मांग रहा है कि मन मुझे दे दो, और हम कहते हैं नहीं नहीं आज तो मैंने किसी को मन दे दिया, नहीं नहीं नहीं, भगवान कहते हैं मैं एव मन आधस्त्व, तेरा मन तू मेरे पास डिपॉजिट करके जा, ये बहुत बहुमूल्य है, ये अगर तुम्हारे पास रहेगा तो तुम्हारे को दूसरे शरीर में जरूर ले जाएगा, इसका काम ही है पुनर्जन्म ले जाने का, ये साधन है, एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने के लिए सारी इंफॉर्मेशन, सारा समाचार मन के अंदर होता है, इसलिए ये मन तुम हमारे पास डिपॉजिट कर दो फिक्स में, तो फिर तुम चिंता से मुक्त हो। भगवत गीता में भगवान ने मन को, मन और बुद्धि को मांगा है, तो मन इंद्रियों का सरदार है, इंद्रियों का मुखिया है, वो भी भगवान के अलावा किसी को नहीं देना चाहिए। घोड़ों के लगाम को मन बोलते हैं, और अर्जुन के घोड़ों के लगाम किसके हाथ में है, और इसी को भक्त लोग गाते कैसे हैं, मेरी डोरी तेरे हाथ, इसका मतलब मेरा मन भगवान तुम्हारे हाथ में है, किसी और के हाथ में मन मत देना, किसी और के हाथ में मन दोगे तो संसार में बार बार आना पड़ेगा, जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं हो सकते। जब मन भगवान को दोगे तो भगवान के दूसरे हाथ में क्या है, तो त्रेवई कई पाणई, दूसरे हाथ में चाबुक है, फिर तो आपके इंद्रियों रूपी घोड़ों को ऐसे चाबक मार के सीधे रास्ते पे चलाएगा कि आपका जन्म मरण हमेशा के लिए मिट जाएगा। जब मन दोगे तब चाबक मारेगा, नहीं तो नहीं मारेगा। तो ये बात, इंद्रियां और हृदय किसको देना चाहिए, और मूर्ख किसको दे बैठते हैं, घर परिवार को, जो झूठी ही, जो झूठे ही उसे माया से मोह लेती है, झूठे ही उसे माया से मोह लेती है, झूठे मतलब असती नाम, असत है, माया से मोह लेती है, इसका मतलब झूठे ही माया से मोह लेती है। तो सच्चा क्या है, भाई झूठ से बचना है तो सच का पता करना चाहिए ना। भगवान कैसे अपने भक्तों को मोह लेते हैं, सच्चे ही। भगवान का क्या एक नाम है, मनमोहन, मन को मोहित करने वाले। और आजकल तो रोज पुरुषोत्तम महीने में यहां हम पढ़ते हैं भगवान का एक विलक्षण बिलो मंगल का गाया हुआ गीत क्या उसमें गाते हैं, क्या चुरा लेता है, मन इंद्रियां सर्वस्व चुरा लेता है। तो बजाय संसार वाला कोई आपका सब कुछ चुराए और मोह ले, इससे मन मोहन मोह ले तो अच्छा है। उसका नाम हरि है और वो अगर आपके मन को हर ले तो अच्छा है, और संसार ने मन को हर लिया तो बार बार जन्म मृत्यु में पड़ना पड़ेगा। तो वो झूठी माया से और ये सच्चे प्रेम से। हरि का अर्थ है अपने भक्तों का दुख हर लेता है भगवान, और फिर प्रेम देके मन हर लेता है। भगवान हमसे सच्चा प्रेम करता है, सुहृद सर्वभूतानां, मैं सब प्राणियों का सुहृद हूं। सुहृद का मतलब दिलबर दोस्त, दिलबर दोस्त का मतलब दिल में रहने वाला और तेरा शुभ चिंतक, तेरा भला चाहने वाला, मैं आपका मित्र हूं। तो भगवान सुहृद है, मित्र है, वो भी मोह लेता है, लेकिन वो जब मोह लेता है तो प्रेम से मोहता है, सच्चे प्रेम से मोहता है, क्योंकि भगवान तो सच्चित आनंद है, माया असत है। तो सत से मोहित होना बंधन से मुक्ति है, झूठ से मोहित होना बंधन है। अब हमारे को निर्णय करना है कि सच से मोहित होना है कि झूठ से मोहित होना। मोहित होना ही पड़ेगा, सच से हो या झूठ से हो। तो भगवान प्रेम देकर मोहित करते हैं और संसार झूठे प्रेम से मोहित करता है। संसार में प्रेम है ही नहीं। संसार में जो चीज है उसका नाम क्या है, काम। संसार में क्या है प्रेम, उसका नाम क्या है, काम। काम और प्रेम में इतना अंतर है जितना सोने और लोहे में। लोहा है काम और प्रेम है सोना। प्रेम का अर्थ है जिससे आप प्रेम करो उसी को सुखी देखना चाहो, अपने को कितना कष्ट आए दुख आए उसकी चिंता नहीं है, इसको प्रेम बोलते हैं। और काम का मतलब है मुझे क्या सुख मिलेगा इससे, मैं क्या इससे प्राप्त कर लूं। दुनिया में सब कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं, कोई देना नहीं चाहता। दुनिया में थोड़ा सा प्रेम का एक छोटा नमूना, मां है जो अपने बच्चे नए जन्म लिए हुए बच्चे से प्रेम करती, वो दुख सह के भी रात जागकर भी बच्चे को सुखी देखना चाहती है, वो प्रेम का छोटा सा नमूना दुनिया में है। बाकी प्रेम इस दुनिया में बिगड़े हुए रूप में है, असली रूप में नहीं है। असली प्रेम भगवान का है। तो प्रेम देकर भगवान मोह ले वो अच्छा है, सच्चा प्रेम सच्चा मोह ऐसे झूठे मोह से बचना चाहिए। वो उसके साथ एकांत में आलिंगन तथा संभाषण करता है, पुरुष जाकर करता है, और अपने छोटे छोटे बच्चों के मीठे मीठे बोलों से मुग्ध होता है, बड़ा खुश होता है छोटे बच्चों के मीठे मीठे बोलों से। केवल दो चार पांच साल, और बच्चा 20-25 साल का होता है तो उसके कड़वे कड़वे बोल सुनकर कानों पे हाथ धरता है। जो मीठे सुनेगा उसको कड़वे भी सुनने पड़ेंगे ना। सबको अनुभव है कि नहीं है, मीठे बोल कंधे के ऊपर उठाया एक बच्चा, बाप बेचारा घर में बच्चा कंप्यूटर लाया तो बाप ने बोला ये बेटा क्या है कैसे चलता है, बोला कंप्यूटर ऐसे चलता है। बेटा बोला कैसे चलता है, बोला बार बार सर क्यों खा रहे हो, एक बार बताया तुम्हें समझ में नहीं आएगा, चुप करके बैठो। बाप ने कहा बेटा तुम जब छोटे थे मैं तुमको उठा के जाता था यहां से, तू मेरे को 100 बार पूछता था ये क्या है और मैं तुमको कभी नहीं बोला चुप करो, और तुमको एक बार मैंने पूछा आप बोलता है चुप करो। तो जो मीठे भाषण सुनाते हैं वो बड़े होके चुप भी कराते हैं, इसको भूलना मत। हम तो हमारी भाषा में बोलते हैं दिन धाड़े, छीना ठोक के जो डाका डालता है वो आजकल अपना पाला पोषा बेटा है। सारी जिंदगी की कमाई शादी में खर्च करा के और शादी के दो चार महीने के बाद सब पत्नी के साथ लेके माँ बाप को बूढ़ा आश्रम में छोड़ के चला जाता है। ऐसा डाकू हमने नहीं देखा सरेआम जो किसी को लूट के जाए और खुशी खुशी। हाँ सच है, झूठ नहीं है, 90% से ज्यादा लोगों को इसका अनुभव है। क्यों भाई, थोड़े सफेद जिनके बाल है सच बोलो कि लूट गए कि नहीं लूट गए? हाँ ईमानदारी से बोलना, लूट गए कि नहीं? कोई एक भाग्यशाली है तो चलो, कोई बच्चा सेवा करता है तो ठीक है, नहीं तो सबका हाल एक जैसा है। सोचने का विषय है। तो आपको बच्चों के मीठे बोल सुनने का इच्छा है और आपको अच्छे लगते हैं तो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का श्रवण करो, इतना उसमें आनंद है कि कभी धोखा देने वाला नहीं है और बड़ा होकर आपको छोड़ने वाला नहीं है, तो उसी के मीठे मीठे बोल सुन लो ना। इसीलिए भगवान अवतार लेके छोटा बन के आते ही इसलिए हैं कि जिस मोह के कारण संसार में ये बेचारे प्राणी जीव फंस गए हैं वो तो यही बच्चों के मीठे बोल का मोह है, ये स्त्री पुरुष के प्रेम का मोह है, ये झूठे मित्रों का मोह है। तो ये सब जो संबंध तुम दुनिया से करके मोह में पड़ जाते हो वो श्री कृष्ण कहते हैं मुझसे कर लो, तुम मुझे बच्चा बना लो, मेरी मीठी मीठी बातों को सुन लो, तुम मुझे मित्र बना लो, तुम मेरे को प्रेमी बना लो, बस फिर तुम्हारे बंधन खत्म। जो तुम्हारी आदत पड़ी हुई है तो तुम वो छोड़ने वाले हो नहीं, इसलिए तुम वही आदत जो तुम्हारी है, तुम्हारा जो वो बिगड़ा हुआ स्वभाव है उसको मेरी तरफ मोड़ लो, तुम्हें प्रेम ही करना है तो मुझसे कर लो, तुम्हें बच्चा ही बना के उसकी तोतली भाषा सुननी है तो मेरी सुन लो, तुम्हें मित्र ही बनाना है तो मुझे बना लो। इसीलिए भगवान छोटे बन के अवतार लेकर आते हैं कि जो हमारे मोह के कारण संसार में बंधन है वो अगर भगवान से कर लेंगे तो वो मुक्ति के साधन हो जाएंगे। ताले में चाबी डालते हैं, एक तरफ घुमाते हैं तो बंद हो जाता है, दूसरी तरफ जमा घुमाते हैं तो खुल जाता है। संसार की तरफ ये सब चला जाएगा मोह में तो बंधन हो जाएगा, और ये कृष्ण की तरफ चला जाएगा तो खुल जाएगा बंधन। बस है कुछ भी नहीं, सोच का अंतर है। इसलिए कृष्ण भावना का मतलब है सारी भावना भगवान कृष्ण की तरफ जानी चाहिए। मित्र बना लो कृष्ण का, अच्छे से अच्छा मित्र है। कितना बड़ा अर्जुन की सहायता करके महाभारत से विजयी बनाया, जिसमें भीष्म और द्रोण थे, कर्ण था, अश्वत्थामा था, कृपा आचार्य था, ये सब अविजय थे, इनको विजय, इनके ऊपर विजय प्राप्त हो ही नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी कृष्ण की कृपा से अर्जुन विजयी हुआ। तो ऐसा मित्र छोड़ के संसार के झूठे मंत्री मित्रों के पीछे भागो जो मंत्री पद से उतरने के बाद उनके पीछे लगता है भूतपूर्व, इसका मतलब पहले भूत बाद में भूत है। उससे मित्रता काय के लिए करना है, भूत आदि पति भगवान से कर लो ना, वो तो भूतों का पति है। तो संसार से झूठे मित्रों के चक्कर में मत पड़ो, व्यवहार सबसे कर लो। हम एक सिद्धांत बताते हैं, संसार से व्यवहार और गोविंद से प्रेम। प्रेम करो भगवान राधा गोविंद से और व्यवहार करो संसार से। लेकिन दुनिया वाले इतने मूर्ख है, भगवान से व्यवहार करते हैं संसार से प्रेम करते हैं। भगवान संडे को आपके पास आएंगे, अगली जन्माष्टमी में जरूर आएंगे, ये तो व्यवहार हो गया। प्रेम करते हैं घर से और व्यवहार करते हैं भगवान से। प्रेम करो भगवान से, व्यवहार करो बेटे से, बेटे का पत्नी से, पत्नी का भाई का, भाई का ऐसे तो करो, किसी को निकालो मत घर से। लेकिन भगवान ने आपको पालने के लिए दिया है बच्चा, तो प्रेम से पालो और भगवान के चरणों में अर्पण कर दो, उसमें मोह मत रखो, मोह प्रेम के रूप में भगवान से कर लो तो बंधन सारे मुक्त हो जाएंगे। अब आइए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं उसको सुनते हैं। माया के राज्य के भीतर पारिवारिक जीवन शाश्वत जीव के लिए बंदी गृह के तुल्य है, जेल खाना है। क्या शाश्वत जीव? शाश्वत जीव का मतलब आत्मा जो सच्चित आनंद है, शाश्वत का मतलब आजाद, उसके लिए माया के राज, माया का राज कहां है? भौतिक जगत माया की राजधानी है। ये जो भौतिक जगत है ये माया की राजधानी है। इस माया की राजधानी में परिवारिक के भीतर पारिवारिक जीवन शाश्वत जीव के लिए बंदी गृह के तुल्य है, जेल खाना है। बंदी गृह में बंदी के हथकड़ी बेड़ी पड़ी रहती है। जेल में कोई होगा तो हथकड़ी होगी, बेड़ी होगी, जेल खाना होगा, रस्सी होगी। इसी प्रकार बद्ध जीव स्त्री के मनोहर सौंदर्य, उसके एकांत आलिंगन तथा प्रेम वार्ता से एवं छोटे छोटे बच्चों की मधुर वाणी से जकड़ा रहता है। इस तरह वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। हम प्रवचन में कभी कथा में लोगों को कहते हैं, लोग सब बंधे हुए हैं। पहले जमाने में दो फ्लैट वाले रूम नहीं होते थे, घर के आगे बहुत बड़ा आंगन हुआ करता था और गाय भैंस बांधते थे, घोड़ा, तो उसमें रस्सी इतनी लंबी होती थी कि वो 50-100 मीटर तक घूम सकता था, जाके खाए घूमे फिर वापस उधर घूमता रहता था। तो हम जितने यहां बैठे हैं उनको एक खूंटा है घर में और दूसरा खूंटा है दुकान पे या नौकरी करते हैं वहां, इन दो जगह रस्सी बांधी हुई है पांव में। सुबह दुकान के वहां से कोई खींचता है और ऐसे चले जाते हैं उधर कठपुतली की तरह, और शाम के वक्त घर वाली रस्सी खींचती है, रस्सा बंधा हुआ नहीं दिखता है लेकिन दो के बीच में बंधे हुए हैं और चलते रहते हैं। क्या विचार है, सच है कि झूठ है? बंधा हुआ दिखता कुछ नहीं है लेकिन बंधन ऐसा है कि दोनों जगह अपने आप खींचे जाते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, भले धक्के दें घर से निकालें लेकिन जाएंगे फिर वहीं, जाने वाले नहीं। जाने वाले नहीं, वहीं वहीं के वहीं, दो के बीच में बंधे हुए हैं। तो ये कौन बंधा हुआ है? बद्ध जीव, बेचारा बंधन में पड़ा हुआ है। तो इन दो जगहों के बीच में तीसरी जगह जाने के लिए दो जगह से परमिशन लेनी पड़ती है, तब कहीं तीसरी जगह जा सकता है। लेकिन फिर भी रस्सी घर में ही बंधी हुई होती है, वो तो पतंग की रस्सी तरह है, कैसे खींच के वापस लाना है, कितना भी दूर जाए जा नहीं सकता। इस श्लोक में स्त्री नाम असती नाम शब्द सूचित करता है कि स्त्री का प्रेम पुरुष के मन को विचलित करने के लिए है। वस्तुतः इस भौतिक जगत में प्रेम कहां? स्त्री तथा पुरुष दोनों ही अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए स्त्री झूठा प्रेम उत्पन्न करती है और मनुष्य उस झूठे प्रेम से मुग्ध होकर अपने वास्तविक कर्म धर्म को भूल जाता है। जब ऐसे संयोग से संतान उत्पन्न होता है तो अगला आकर्षण होता है उन बच्चों की मीठी तोतली बोली। घर में स्त्री का प्रेम तथा बच्चों की बोली उसे सुरक्षित बंदी बना लेती है और इस तरह वो अपना घर छोड़ नहीं जा पाता। वैदिक भाषा में ऐसे व्यक्ति गृह मेधी कहलाते हैं, ये गृह मेधी कहलाते हैं कि गृह से ज्यादा उनकी बुद्धि कहीं जाती नहीं। और गृह, दूसरा गृह का अर्थ क्या होता है? मगरमच्छ को क्या बोलते हैं? उसी जैसा ही है ना, जो निगलता रहता है, आस्ते आस्ते उम्र सारी उसके पेट में चली जाती, समाप्त कर देता है। तो इसका मतलब क्या है? घर दुकान मकान सब बंद कर दें। एक महात्मा प्रवचन कर रहा था, बोला आपके बंधन का कारण क्या है? घर दुकान मकान स्त्री परिवार पुत्र सब, ये ना। लोगों ने कहा, बोला मेरे को दे दो आप जाओ। भगवत गीता के 13वें अध्याय में जहां ज्ञान के लक्षण लिखे हैं वहां भी स्त्री पुत्र परिवार बंधन बताया हुआ है, लेकिन प्रभुपाद ने वहां एक बहुत सुंदर चीज लिखी है, आप सुन लीजिए। जो पारिवारिक जीवन में चार चीजें कर सकता है वो समझ लो कि गृहस्त में रहते हुए भी मुक्त है। पहली चीज वहां लिखी है जो रोज भगवान का नाम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अपने घर में नेम से जपता है, एक बात। दूसरी बात, भगवान का चित्रपट अथवा विग्रह घर में स्थापित किया है और उसकी पूजा घर में करता है बड़ी प्रेम और श्रद्धा से, उसको सुलाता है, उठाता है, भोग लगाता है, अगरबत्ती आरती करता है, दूसरी बात। तीसरी बात, जो घर में पकाता है शुद्ध सात्विक भगवान को भोग लगाता है और फिर परिवार मिलकर प्रसाद को ग्रहण करते हैं। और चौथा, घर में भागवत गीता भागवत आदि का अगर पाठ अध्ययन होता है तो वो गृहस्थी बंधन से मुक्त है। ये भगवत गीता में प्रभुपाद जी ने गृहस्थों को जेल से निकालने के लिए सुरक्षित साधन बताया है। अब आप ये चार चीजें अगर कर सकते हो घर में, हरे कृष्ण मंत्र जपना, भगवान का चित्र पट अथवा श्री विग्रह रखना, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद खाना और गीता भागवत आदि शास्त्र का अध्ययन श्रवण करना, तो फिर गृहस्थी गृह में ही नहीं है, गृहस्थ आश्रम है, वो धन्य है, वो तीनों आश्रमों का उद्गम स्थान है। सन्यासी भी किसी माँ के उदर से पैदा हुआ, किसी पिताजी ने उसका पालन पोषण किया, ब्रह्मचारी का भी जन्मदाता माता पिता है और वानप्रस्थी भी माता पिता से ही उत्पन्न हुआ है, और तीनों आश्रमों का जन्मदाता नहीं पालन पोषण करने वाला भी गृहस्थ है। ग्रस्त कमाता है, दान देता है, तब साधु संत महात्मा आश्रम मठ मंदिर चलते हैं, ये भी सब ग्रस्त के दान से चलते हैं। तो ग्रस्त ही, प्रभुपाद की एक चिट्ठी है, किसी भक्त को लिखा था, छोटी सी आयु में महाप्रभु जब आए तो 24 साल में शादी किया, अद्वैत आचार्य विवाहित थे, श्रीवास पंडित विवाहित थे, तो विवाह कोई अपराध नहीं है, लेकिन गृहस्थी सदगृहस्थी हो तो तीन आश्रमों का जन्मदाता भी है, पालन पोषण करता भी है, तीन आश्रम उसके ऊपर टिके हुए हैं। तो जो भाग्यवश जैसे भी अपने कर्मों के अनुसार अगर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है तो ये साधन अपना ले तो फिर वो सदगृहस्थी के रूप में अच्छे बालकों को उत्पन्न करेगा जो आगे चल के भागवत भक्त होंगे, तो साधु सन्यासी की सेवा करेगा, मंदिर का निर्माण करेगा, भक्तों को भोजन का कार्य चलता रहेगा। अब ये आप थोड़ी देर में पीछे जाके भोजन करेंगे, यहाँ 300-400 आदमी रोज भोजन लेते हैं, ये कोई हम मंदिर वाले को तो कारखाना हमारा कोई नहीं चलता है, न कोई यहाँ नौकरी करने जाता है, ये तो आप लोगों की तरफ से आता है, हम तो केवल पका के खिलाते हैं, और क्योंकि पका के खिलाते हैं उसकी मजदूरी में हमारे को खाने को मिल जाता है, बाकी देने वाले आप हैं, खाने वाले आप हैं, हम तो सेवक हैं। तो ये ग्रस्त सदग्रस्ती कहलाता है। ये ग्रह मेधी का वर्णन था अभी तक, आप सब ग्रस्ती हैं इसलिए सुन लीजिए, ये ग्रह मेधी कहलाता है जिसका अर्थ है जिसके आकर्षण का केंद्रीय घर है। ग्रह मेधी जिसकी बुद्धि घर से ज्यादा सोचती भी नहीं, बस घर तक ही सीमित है। ग्रस्त वो है जो अपने परिवार पत्नी तथा बच्चों के साथ रहता है किंतु उसका वास्तविक जीवन लक्ष्य कृष्ण भक्ति उत्पन्न करना है। गृहस्थ रहता परिवार में है लेकिन उसका उद्देश्य कृष्ण भक्ति उत्पन्न करना है, अपने जीवन में कृष्ण भक्ति करना है, तो ये गृहस्थ कहलाता है। किंतु उसका वास्तविक जीवन जीवन लक्ष्य कृष्ण भक्ति उत्पन्न करना है। इसीलिए मनुष्य को ग्रस्त बनने की सलाह दी जाती है। इसलिए कहते हैं ग्रस्त बनो ताकि एक के बजाय दो इकट्ठे होकर सेवा करो भगवान की। एक से नहीं होगी तो इकट्ठे होकर। इसलिए साधु के लिए शिष्य होता है और ग्रस्त के लिए पुत्र होता है। दोनों समान होते हैं ताकि सहायता करें भगवान की सेवा में। ये भाषा साधु के लिए सन्यासी के लिए शिष्य, ग्रस्ती के लिए पुत्र, ये दोनों सेवा के लिए होते हैं। भगवान की सेवा में जब हम नहीं कर पाए बूढ़े हो जाएं तो सहायता करें, इसलिए होते। तो ये तो ठीक है। गृहमेदी बनने की नहीं, ग्रस्त बनने की शास्त्र ने। तो ग्रस्त तो संस्कार है, विवाह को संस्कार है। और भगवत गीता के 18वें अध्याय में जहां यज्ञ का वर्णन है, यज्ञ तप दान कर्म न त्यजित, वहां प्रभुपाद जी ने लिखा है मैं सन्यासी होकर अपने भक्तों का विवाह करता हूं। लोग मेरे ऊपर आक्षेप करते हैं कि सन्यासी विवाह क्यों करता है, तो ये तो यज्ञ है। और यहां भगवान कहते हैं यज्ञ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो गृह जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो उस वक्त यज्ञ होता है, विवाह यज्ञ संस्कार होता है। तो ये विवाह यज्ञ में कैसे छोड़ू, ये तो भगवान कहता है नहीं छोड़ना चाहिए। तो गृहस्थ आश्रम और गृहस्थ विवाह संस्कार गृह मेधी के लिए नहीं, ग्रस्त बनने के लिए है। ग्रस्त की मुख्य चिंता मोह जनित पारिवारिक जीवन से छूटकर कृष्ण के साथ वास्तविक पारिवारिक जीवन में प्रविष्ट करना है। हम कृष्ण के परिवार हैं, हम सब उसके संतान हैं, हम साथ कृष्ण भक्ति के। इसलिए हम कहते हैं घर में भगवान को बिठाने का मतलब भगवान को घर का बड़ा बना देना। जब कोई बड़ा घर में होता है तो सब शांति से रहते हैं, झगड़ा भी नहीं होता है, प्रेम भी बना रहता है। भगवान घर में होगा तो सबसे बड़ा है, उसी की सेवा करके सब रहेंगे तो सुखी रहेंगे। मालिक घर का भगवान है, हम सब सेवक हैं। जयपुर के महाराज ने इतना बड़ा उदाहरण स्थापित किया, अपने राज महल में भगवान गोविंद देव जी को स्थापित किया। बोला मालिक इस राज का गोविंद देव जी है, मैं उसका सेवक हूं। तो ये राजा को भी राज करने का अधिकार है, राज का मालिक भगवान को बना दिया। आप अपने घर का मालिक भगवान को बना दीजिए और घर में सब सेवा कीजिए उसकी, तो फिर वो गृहस्थी हो गया। जबकि गृह मेधी का कार्य तथा कथित पारिवारिक जीवन से अपने को जन्म जन्मांतर तक बारंबार बांधना और निरंतर माया के अंधकार में बने रहना है। अब आप फैसला कीजिए कि आप गृहस्थी बनना चाहते हैं कि गृह मेधी। आप क्या हैं ये मैं नहीं पूछता हूं, आप क्या बनना चाहते हैं ये बोलो। क्या बनना चाहते हैं? सदगृहस्थी बनना। सब ब्रह्मचारी तो नहीं बोल रहे हो ना? लाल कपड़े वाले नहीं बोलना है? ये लगी है, कैमरा लगी है, किसी ने बोला होगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की।